उस समय भगवान शंकरशन परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे, जिन्हें विद्वान जन भगवान वासुदेव के रूप में सम्मान देते हैं, किंतु महान पंडित मुनियों की उन्नति के लिए उन्होंने अपने कमलवत नेत्रों को कुछ कुछ खोला और बोलना शुरू किया। इसमें अनुवाद, इसमें तात्पर्य नहीं है, तो इसके हम अगला श्लोक भी पढ़ेंगे। चूंकि मुनिगण गंगा जल के माध्यम से उच्चतर लोकों से निम्नतर भाग में आए थे, फलस्वरूप उनके सिर के बाल भीगे हुए थे। उन्होंने भगवान के उन चरणों का स्पर्श किया जिनकी पूजा सर्पराज की कन्याओं द्वारा अच्छे पति की इच्छा से विविध सामग्री द्वारा की जाती है। तात्पर्य, गंगा का जल सीधे भगवान विष्णु के चरण कमल से प्रवाहित होता है और इसका मार्ग ब्रह्मांड के उच्चतम लोकों से लेकर निम्न लोक तक जाता है। मुनिगण प्रवाहित जल का लाभ उठाकर सत्यलोक से नीचे आए, परिवहन की यह विधि योग शक्ति से ही संभव हो सकी। यदि कोई नदी हजारों मीलों तक प्रवाहित होती है तो पूर्व योगी इसके जल में केवल डुबकी लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। गंगा ही एकमात्र ऐसी नदी है जो पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है और मुनिगण इस पवित्र नदी के माध्यम से ब्रह्मांड भर में यात्रा करते हैं। यह कथन कि उनके बाल गीले थे यह सूचित करता है कि विष्णु के चरण कमल से सीधे निकल जल गंगा से ही बाल गीले थे। जो भी व्यक्ति अपने सिर से गंगा जल का स्पर्श करता है वो भगवान के चरणों का स्पर्श कर रहा है और सारे पापों के फल से वो मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करने या सारे पापों के धुल जाने के बाद फिर से पाप करने से अपने आप को बचाता है तो निश्चित रूप से उसका उद्धार हो जाता है, किंतु यदि वह पुनः पाप कर्म करने लगता है तो उसका गंगा स्नान हाथी के स्नान की तरह होता है। जो नदी में ठीक से नहाता है किंतु बाद में भूमि के धूल से अपने शरीर को दूषित करके सारी बातें बिगाड़ देता है।
ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवंश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण, सब भक्तों के चरणों में वंदना कर। आज हम जो श्लोक पढ़ रहे हैं उसमें बताया गया कि जब सनत कुमार भगवान शंकरशन के पास जब प्रश्न पूछने जाते हैं तब भगवान शंकरशन परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे और फिर उन्होंने अपनी आंखें खोल के कुछ बोलना शुरू किया। और अगले श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं कि जो ऋषि मुनि हैं वो उच्च लोकों से नीचे लोक आए थे गंगा के माध्यम से, इसलिए उनके बाल भीगे हुए थे। भगवान के चरणों को स्पर्श किया, जिसकी पूजा नाग कन्याएं भी करते हैं जब उनको अच्छे पति की इच्छा हो। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी गंगा की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है। गंगा भगवान का अरेंजमेंट है कि कल हमने गंगा के बारे में कुछ बोला था, देन आई डिड नॉट नो दिस इज द वर्स्ट टुडे। गंगामयी भगवान का ही चरणामृत है। इससे हमारे यहां चरणामृत होता है, छोटा सा बर्तन, इसमें ये भी एक लीटर चरणामृत आ सकते हैं। गंगा जी एक बहुत बड़ा बर्तन है चरणामृत का, उसका साइज है 1500 मील लॉन्ग। इतना बड़ा बर्तन और गहराई है 30-35 फीट। मैं आपको बता रहा था कि आज से 10-15 दिन पहले भगवान के अरेंजमेंट से मुझे गंगा के किनारे एक कमरा मिला था। वहां पे एक मिशन का एक आश्रम है जो जिसकी बालकनी गंगा के ऊपर है, यानी यू आर एक्चुअली ऑन दी बैंक ऑफ दी गंगा, एट द सेम टाइम यू कैन स्लीप देयर ऑल्सो, एकदम कंफर्टेबल। तो गंगा पर हम दूर से देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि गंगा में कितनी गहराई है। जैसे ऋषिकेश में गंगा बह रही है तो कुछ भागों में बिल्कुल शांत लगती है, लेकिन वास्तव में गंगा बहुत गहरी है, करीब 35 फीट 40 फीट। उसके नीचे कई जीवात्मा हैं, मछलियां हैं, जानवर हैं, कभी कभी बीच में दिखाई पड़ते हैं, कोई जानवर बाहर दर्शन देता है और फिर गोविंदम आदि पुरुषम फिर। सो गंगा इज एक्चुअली वेरी डीप, इट्स वेरी मिस्टीरियस ऑल्सो, बहुत हुई है। अपने जो लोगों ने राधानाथ स्वामी महाराज की बायोग्राफी पढ़ी है तो गंगा से हरे कृष्णा मंत्र सुनाई पड़, मैं भी एक घंटा बैठा रहा लेकिन मुझे नहीं सुनाई पड़ा। मैं चैंटिंग कर रहा था लेकिन फिर भी अपना मंत्र सुन रहा था। यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड और हिज डिवोटी अकॉर्डिंग टू योर प्यूरिटी। तो मैं भी एडिटीज को देख रहा हूं, अभी एडिटीज को शुद्ध भक्त देखें तो उनका अलग ही रिएक्शन होता है, नहीं? शुद्ध भक्त साक्षी गोपाल की कहानी में शुद्ध भक्त भगवान से बातचीत करते हैं। भगवान चल के आए साउथ इंडिया से वृंदावन, एक अपने भक्त को, सॉरी वृंदावन से दक्षिण भारत फिर उड़ीसा। जब किसी की आंखों में प्रेम का अंजन होता है तो भगवान को देख सकते हैं। ऐसे नाम भी ऐसी है, नाम भी एक ड्यूटी है। महानिधि महाराज अपनी किताब में बताते हैं कि एक बाबा जी थे, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज या उनके पहले, जिन्होंने एक डीटी बनाई थी पत्थर के ऊपर, इसमें हरे कृष्णा महामंत्र लिखा हुआ था और उसका अभिषेक करते थे। वो भी एक डीटी है, महामंत्र भी एक डीटी है। मैंने इसके दर्शन किया आज 1.5 घंटे, आपने भी किए होंगे 1.5 घंटे, हम चैंटिंग कर रहे हैं, वी आर हैविंग दर्शन। तो अगर हम सच्चे भक्त होते तो हम उस डीटीज को देख के हमारे आंखों से आंसू आ रहे होते, हम अभिषेक कर रहे होते। अभी क्या होता है, हम डीटी को देखते हैं तो आंखें प्रेम से बंद हो जाते हैं। कभी कभी जैसे यहां बताया कि भगवान शंकर ने आंखें खोली, कभी कभी हम आंखें खोलते हैं बीच में देखने के लिए सब ठीक है कि नहीं, अभी 7:15 बजे कि नहीं। सो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्शियसनेस। डिवोटी भी एक ही भक्त के बारे में, कोई एक भक्त बोलता है कि ये डिवोटी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, और दूसरे भक्त को लगता है कि नहीं ये खड़ूस है, इसका स्वभाव अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा खड़ूस होता है। यू नो व्हाट इज खड़ूस? खड़ूस किसको बोलते हैं? वेरी वेरी हार्श, वेरी समथिंग। यू सी थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर आईज, जैसे जैसे आंखें हैं वैसे। अब ग्रीन चश्मा लगा सब जगह ग्रीन दिखाई पड़े, ब्लू चश्मा सब जगह ब्लू दिखाई पड़े। तो गंगा के भी दर्शन करने के लिए भी योग्यता चाहिए। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी बताते हैं अगर कोई पापी से पापी व्यक्ति भी है उसको तो भगवान नहीं दिखाई पड़ रहे गंगा में, लेकिन वो व्यक्ति भी भगवान गंगा में स्नान करते 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 वो शुद्ध हो जाता। मटेरियल लेवल पर प्रभुपाद जी बताते हैं उनका अनुभव है, बंगाल में कलकत्ता में एक व्यक्ति थे जिनको डॉक्टर ने बोला कि आपको जितनी पेट की बीमारी है आप सिर्फ गंगा स्नान करो। उसने 1 महीने या 2 महीने गंगा स्नान किया, उसकी सारी बीमारियां दूर हो गई। मैं भी ऋषिकेश गया था तो मेरे को कुछ लोगों ने बोला आप सिर्फ गंगा में स्नान करो तो अच्छा रहेगा। 3-4 दिन में रहा लेकिन फिर मुझे मैसेज आया प्रीचिंग प्रोग्राम है तो मैं आ गया फिर यहां पर। प्रीचिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्टेइंग नियर गंगा। लेकिन जो जो फ्री है कभी, जैसे गृहस्थ आश्रम में डिवोटी हैं और कभी फ्री टाइम मिलता है, तो गंगा के किनारे यमुना के किनारे रहना अच्छा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि वहीं पे कुटिया बनाते थे। गौतम ऋषि गंगा की एक ब्रांच है गोदावरी, उसको लेकर आए। एक्चुअली ब्रह्म विवर्त पुराण में बताया गया है कि गंगा राधा और कृष्ण है। अभी हम जानते हैं कहानी वामन देव की, जब भगवान वामन देव प्रकट हुए उन्होंने 3 कदम जमीन नापा, पहले कदम से सब धरती ले ली, दूसरे कदम से ब्रह्मांड की बाउंड्रीज को ब्रेक कर दिया। इसलिए एक डिवोटी बोल रहे थे भगवान का स्वभाव ऐसा है कि अगर आप उंगली दो तो पूरा हाथ खींच के पूरा ही खींच लेते हैं भगवान। कृष्णा टेक्स अवे एवरीथिंग। तो जब भगवान वामन देव के चरणों से जो जल आता है विरजा नदी जो धोते हुए, उसको गंगा कहते हैं। ये एक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ब्रह्म विवर्त पुराण में और ज्यादा गहरी अंडरस्टैंडिंग है। ब्रह्म विवर्त पुराण बताएगा कि एक बार गोलोक वृंदावन में संगीत का कार्यक्रम चल रहा था और सब गोप और गोपियां और गंधर्व और सब, उस समय भगवान शिव जी ने भगवान का कुछ गुणगान किया। वो गीत इतना सुंदर था, इसको सुनते ही राधा और कृष्ण जल बन गए। राधा कृष्ण एकदम जल रसमय बन गए। जैसे आप गोवर्धन में जाओगे तो परिक्रमा में एक कुंड आता है, नवल कुंड और अप्सरा कुंड, देखा आपने पूछरी के लोटे बाबा से थोड़ा पहले। अप्सरा कुंड क्या है? गोपियों का प्रेम है वो जल रूप में। और नवल कुंड क्या है? वो गोपों का प्रेम है जल रूप में। तो सब डिवोटी सोच रहे थे अभी क्या हुआ, राधा और कृष्ण ही नहीं है यहां पर जिनके लिए हम कर रहे हैं। जैसे अगर हम सब डिवोटीज आते हैं और 7:30 बजे वेट कर रहे हैं और दर्शन खुलता है और राधा कुंज बिहारी नहीं है, तो बहुत आश्चर्य लगेगा क्या हो गया। तो भक्तों ने देखा वहां पर जल ही जल था। और फिर एक आवाज सुनाई पड़ी कि अगर शिव जी कुछ शास्त्रों की रचना करेंगे तो मैं फिर से प्रकट होऊंगा। भगवान की आज्ञा से शंकर जी ने शास्त्रों की रचना की, उसके बाद फिर से राधा कृष्ण प्रकट। तो गंगा चरणामृत भी है, गंगा राधा और कृष्ण भी है। गंगा की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। एक पूरी किताब है, श्री लोकनाथ स्वामी महाराज के शिष्य हैं जय विजय प्रभु, उन्होंने किताब लिखी गंगा के बारे में, देखा आपने मदर गैंजिस 500-600 पेजेस बुक, डिटेल स्टोरीज अबाउट गंगा, पूरे गंगा को उन्होंने ट्रेस किया गंगोत्री से कहां 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 जाती है। उन्हें बताया कि गंगा की भी अलग अलग शाखाएं हैं, बद्रीनाथ से गंगा आती है वो अलकनंदा है, गंगोत्री से गंगा आती है उसको भागीरथी है, फिर पिंडा है, ऐसे 5 ब्रांचेज है गंगा के। और ये सब अलग अलग जगह पर मिलते हैं और जहां पर मिलते हैं उसको प्रयाग बोलते हैं। तो पहले विष्णु प्रयाग है, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग, नंद प्रयाग, ऐसे 5 प्रयाग है। फिर ऋषिकेश में जाने के बाद वो प्लेन सरफेस पे चलने लगती है गंगा। और गंगा का फ्लो कोई कोई भागों में तो बहुत ही ज्यादा है। इनफैक्ट कोई कोई जगह पे गंगा बहुत छल छल आवाज करते हुए निकलती है और कहीं पर गंगा बहुत शांत नजर आती है। लेकिन हर स्थिति में गंगा बहुत गहरी होती है। ऐसे कभी कभी भक्त छल छल करते हुए प्रचार करते हैं और कभी कभी भक्त एकदम शांत से जपा करते हैं, लेकिन हर स्थिति में गहराई रहनी चाहिए, डेप्थ होनी चाहिए भक्ति में। हम किस चीज के बारे में सोच रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। आज मैं जप कर रहा था और मैं जप में अच्छे विचार आ रहे थे, भगवान राधा कृष्ण या मेरे को राधा गोपीनाथ के विचार आ रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आधे घंटे बाद फिर चैनल चेंज हो जाता है। समटाइम्स यू आर थिंकिंग ऑफ कृष्णा और फिर कुछ उससे विचार आ जाते हैं, मैं डिस्कस नहीं करूंगा, यू नो ये क्या ये क्यों हुआ, कैसे क्या हुआ, प्रीचिंग कहाँ जाना है, क्या करना है, पैशन नहीं चले। वी हैव टू लर्न टू बी लाइक गंगा, ऑलवेज स्टेडी एंड स्मूथली फ्लोइंग टूवर्ड्स कृष्णा इन मायापुर। इसलिए गंगा माता जाते जाते कहां तक जाती है? मायापुर तक, कलकत्ता तक। महारानी कुंती बोलती है ऐसे प्रार्थना में, व्हाट इज दैट वर्स, कई में अनन्य विषय, यस लेट माई माइंड फ्लो टूवर्ड्स यू जस्ट लाइक मदर गंगा। गंगा माता को कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं। आप अगर ऋषिकेश में, आप लोगों ने कई वो किताब में पढ़ा होगा, ऋषिकेश में कई शिलाएं हैं, आप वो शिलाओं के पास बैठकर देखिए तो गंगा के ऊपर कई ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बड़े बड़े चट्टाने आते हैं, पर्वत आते हैं। तो गंगा किस तरीके से अपना अपना रास्ता निकाल लेती है, विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स शी मेक्स हर ओन वे। ऐसे भक्ति में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कई बार बाहर से, कई बार अंदर से, लेकिन भक्त तो अपना रास्ता बनाना चाहिए कि मुझे कृष्ण के पास जाना ही है, मेरा मन फोकस्ड होना चाहिए कि अंत में मुझे कृष्ण को प्राप्त करना। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, इंग्लिश में कहावत है, कि अंत अच्छा होना चाहिए, अंत नारायण स्मृति होनी चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, सब लाइफ में बहुत सारे डिफिकल्टीज आते हैं, लेकिन अंत में कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। अंत में बस वी हैव टू रिमेम्बर कृष्ण एंड गो बैक टू कृष्ण। तो गंगा माता के बारे में कई कहानियां हैं, उसमें से एक कहानी है कि एक बार एक व्यक्ति बड़े खुशी के साथ गंगा के ओर जा रहे थे, या दूर यात्रा कर रहे थे गंगा के पास पहुंचने के लिए। सोचिए अगर आज आपको गंगा जाना है तो आप बड़े आसानी से यहां से झेलम एक्सप्रेस से दिल्ली जा सकते हैं, और वहां से गंगा बहुत पास में ही है, या फिर आजाद हिंद से कलकत्ता जा सकते हैं, वहां भी गंगा है। लेकिन उस जमाने में गंगा जाने के लिए लोगों को हजारों मील चलना पड़ता था, और रास्ते में पर्वत पार करने पड़ते थे और जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता था। तो व्यक्ति जा रहा था, अचानक जंगली जानवर ने आक्रमण किया उस पर और उसकी मृत्यु निश्चित थी। उसने जोर से पुकारा, गंगा गंगा, जोर से गंगा गंगा, जोर से गंगा जी को पुकारा, और मृत्यु की स्थिति में गंगा जी को याद किया तो तुरंत वैकुंठ, उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, जस्ट बाय रिमेंबरिंग गंगा। आपको फेमस कहानी मालूम है जो मैं वृंदावन यात्रा में बताते हैं कि एक बार एक सांप, सॉरी गरुड़ जी एक सांप को लेकर जा रहे थे ना खाने के लिए, नहीं गरुड़ जी के लिए सांप खाना महाप्रसाद है गोविंद है। गरुड़ जी इज नॉट अंडर द एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। इनफैक्ट जो गरुड़ जी को इंस्ट्रक्शन देने का प्रयास करता है कि ऐसा करो ऐसा मत करो, कालिया नाग की तरह, कालिया नाग ना सौबरी मुनि है, सौबरी मुनि, उनका भी यू नो उनको भी नुकसान हो जाता है, उनको बहुत फल भुगतना पड़ा। गरुड़ जी सांप लेकर जा रहे थे और अचानक वो सांप की पूंछ गंगा जी को स्पर्श की, बहुत लंबा सांप रहा होगा, नहीं गरुड़ जी हवा में उड़ रहे हैं, उसकी पूंछ टच कर रही है, उस बी सेवरल फीट लॉन्ग, और बस क्योंकि उसने गंगा जी को स्पर्श किया अंत समय उसको एक आध्यात्मिक रूप मिल गया, स्पिरिचुअल बॉडी। और गरुड़ जी जिसको खाने जा रहे थे उसको पीठ पे बिठा के वैकुंठ ले गए, लेकर स्पॉन्सर्ड यात्रा। ये कहानी ब्रजवासियों ने सुनी, नंद बाबा, यशोदा मई, सीतामा, मधुमंगल ये कहानी सुनी तो उनकी भी इच्छा हुई, हम भी जाना चाहते हैं, हम गंगा जी के यहां जाएंगे। उन्होंने टिकट बुक किया, शायद आरएसी थे, कंफर्म टिकट्स थे, अबाउट टू गो। सडनली कृष्ण आस्ट, कृष्ण ने पूछा, बाबा बाबा आप कहां जा रहे हो, बाबा बाबा। और कृष्ण के पूछने का ढंग ऐसा होता था कि नंद बाबा रोक नहीं सकते थे, छोटे बच्चे होते हैं बहुत बहुत इंक्विजिटिव होती हैं, ये क्यों हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, नहीं आप मुझे गृहस्थ आश्रम में आप देखोगे छोटे बच्चे और हर एक चीज जानना चाहते, या आप जो ब्रह्मचर्य आश्रम में आपको अपनी बाल्य लीला याद होगी तो जस्ट इंक्विजिटिव एवरीथिंग यू वांट टू नो। कृष्ण वाज लाइक दैट, वेरी इनोसेंट चाइल्ड, कहां जा रहे हैं, गंगा स्नान करने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण दिखाना चाहते थे कि सारे तीर्थ ब्रज में है, न केवल गंगा, यमुना, सरस्वती, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, तिरुपति, सारे वैकुंठ लोक, इन्यूमरेबल वैकुंठ प्लैनेट्स ये वृंदावन के एक धूल के कण में आ जाते, इतना पावर है वृंदावन का। और वही धूल है जो इस्कॉन मंदिर में है, या जो फोगला आश्रम में है, या हम ध्यान नहीं देते हम किसके ऊपर चल रहे हैं। अगर हमें ब्रज की महिमा मालूम होती तो हम चलते ही नहीं, हम सिर नीचे करके ही चलते, यू नो यू वुड वॉक विद आवर हेड्स डाउन एंड फीट अप, यू नो। यस, वृंदावन इज सच ए प्लेस, देव मुनिगण भी उसकी पूजा करते हैं वृंदावन। हम लोग फिजिकल वृंदावन देख रहे हैं बाहर से, हमको दिखाई पड़ता है वो वृंदावन सिटी बन गया, ठाकुर निवास, भोगला आश्रम, गग्रसेन, लस्सी की दुकानें और ब्रिजवासी स्वीट्स, और बीच में कृष्ण बलराम भी हैं थोड़े, लेकिन एक्चुअली वृंदावन क्या है, यू रीड वृंदावन, वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंता मणि धाम, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं वहां पे हंस और सारस और कोकिल है, यू हैव टू सी फ्रॉम स्पिरिचुअल आइज, अदरवाइज वी कैनॉट सी, वी आर जस्ट सींग एक्सटर्नल्स, बाहर से हम देख रहे हैं। तो भगवान कृष्ण बोले कि आप चिंता मत करो, सारे तीर्थ यहीं पर हैं, गंगा यहीं पर है। और उन्होंने बताइए, जो कुंड दिख रहे हैं ये मानसी गंगा है, ये गंगा है जल रूप में, और भगवान के वचनों को सिद्ध करने के लिए गंगा देवी प्रकट हो गई। गंगा देवी का वाहन क्या है, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, ये देवी देवताओं के वाहन भी बड़े विचित्र होते हैं नहीं। शिव जी का बैल है, ब्रह्मा जी का हंस है, जैसे आजकल मारुति BMW स्कॉर्पियो होते हैं, दिस इज देयर वर्जन। और कभी भी गियर चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट एक बार शिवजी बैल पर सवार होकर आ रहे थे, समथिंग अबाउट मायापुर, प्रभु जी कन्हैया ठाकुर प्रभु जस्ट रिटर्न फ्रॉम मायापुर, है ना, प्रभु जी ने बताई कहानी मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो एक बार शिवजी जो है वो उच्च प्लैनेट कैलाश से आ रहे थे भागवत सुनने के लिए, चैतन्य भागवत, और उनको लगा कि मैं लेट नहीं हूं, क्योंकि उनको 8:30 का टाइम था, वो पहले ही पहुंचना चाहते थे आपकी तरह, कुछ लोगों की तरह। तो शिवजी आ रहे थे और उनको लगा कि लेट नहीं होना चाहिए, तो रस्ते ब्रह्मलोक, क्योंकि शिवलोक से नीचे ब्रह्मलोक, फिर उसके बाद स्वर्गलोक जनलोक, तब फिर उसके बाद पृथ्वीलोक। तो शिवजी ने ब्रह्मा जी को बोला कि मुझे जल्दी जाना है, मुझे लेट हो रहा है, और ये बैल तो बैल है, चाहे शिवजी का बैल हो, ये ना बैल इज बैल, कितना स्पीड होगा, 40 भी नहीं होगा। शिवजी बोले ब्रह्मा जी मैं जल्दी जाना है, मुझे आपका हंस दे दो। बोले ठीक है आप ले जाओ। ब्रह्मा जी पॉजिटिव नहीं है, चलो कोई बात नहीं, भगवान की सेवा में वापस दे देना। दिस इज माई स्पेक्यूलेशन, फॉरगिव मी। ब्रह्मा जी तुरंत बैठ गए, सॉरी शिवजी तुरंत से बैठ गए, बैल को वहीं पार्क कर दिया, तुरंत टाइम पे पहुंच गए। और इनफैक्ट ऐसे बताया गया कि शिवजी इतने एंग्जाइटी में थे भागवत सुनने के लिए, चैतन्य भागवत सुनने के लिए, कि शिवजी के सिर जो एकदम गर्म हो गया, और इसलिए वहां पे जो शिवलिंग है उसको क्या बोलते हैं, हंस वाहन, दैट इज केप्ट अंडर वाटर, मालूम है आपको, तो पानी के अंदर रखते हैं भगवान। इतने जैसे कभी किसी को बहुत एंग्जाइटी होती है या क्रोध आता है तो बोलते हैं ना दिमाग गर्म हो गया एकदम, सो यू गिव हिम सम नींबू वाटर, कोल्ड वाटर, है ना। तो शिवजी इमर्स्ड है हमेशा से। तो उदाहरण यह है कि कैसे उत्सुक होना भगवान के लिए, कोई भी चीज के लिए, कोई भी चीज अगर आपको प्राप्त करना है तो एक मन से डेडिकेट होना पड़ता है उसके लिए। आपको बिजनेस करना है अच्छा तो पूरे ध्यान से करना होता है, तो टेम्पल कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके लिए पूरे ध्यान से करना है, आपको भगवान की आरती करनी है तो पूरे ध्यान से आरती करनी, कोई भी चीज नहीं, इवन आपको मटेरियल वर्ल्ड में कोई डिग्रीज प्राप्त करने है, बीटेक एमटेक, तो उसके लिए भी पूरा ध्यान देना होता। तो कृष्ण के लिए कितना ध्यान देना चाहिए, बिलोमंगल ठाकुर की कहानी हमेशा याद रखनी चाहिए, बिलोमंगल ठाकुर कैसे। इसलिए मैंने देखा है कि जो व्यक्ति बहुत जिद्दी होते हैं वो भक्ति में सफल होते हैं अंत में। जिद्दी मतलब डिटरमिंड, जिद्दी मतलब नॉट प्राउड, जिद्दी के दो मीनिंग है, एक तो अभिमान होना, भक्तों के सामने झुकना लेकिन माया के सामने नहीं झुकना, यू टू बी डिटरमिंड टू गो बैक टू गॉड। मुझे प्रभुपाद को देखिए, प्रभुपाद कितने डिटरमिंड थे, कोई टिकट नहीं मिल रहा चलो मैं सुमति मोरारजी के सामने ही ऑफिस के सामने ही बैठा रहूंगा, एक दिन दो दिन नहीं, ही वेटेड फॉर वन और टू डेज जस्ट। कितना डिमीनिंग लगता है नहीं, एक कोई ऑफिस के सामने ऐसे बैठे रहना कि मुझे टिकट के लिए पैसे दो, इट लुक्स वेरी इंसल्टिंग फॉर सच ए ग्रेट पर्सनैलिटी, प्रभुपाद की तरह व्यक्ति के लिए। भगवान ने क्यों नहीं एक एयर इंडिया चार्टर्ड फ्लाइट दे दिया प्रभुपाद जी के लिए, भगवान दे सकते थे, लेकिन फिर प्रभुपाद जी की महिमा नहीं होती। तो भगवान जब भक्त के जीवन में कठिनाई भेजते हैं, मुश्किलें भेजते हैं, तो उसका उसकी महिमा और बढ़ जाती। तो ये गंगा जी अपने वाहन के ऊपर सवार हुई और सारे ब्रजवासियों को विश्वास हो गया कि यस यहां पर गंगा है, ये गंगा में और वो गंगा में कोई अंतर नहीं है, गोवर्धन में गंगा है, मानसी गंगा और हरिद्वार में गंगा है, दोनों एक ही गंगा, फर्क ये है क्योंकि मानसी गंगा ब्रज में है तो यहां पर स्नान करने का फल जो है वो 1000 गुना ज्यादा होता है कंपेयर टू हरिद्वार में जो गंगा है। श्री प्रभुपाद यहां लिखते हैं कि गंगा के स्पर्श से ही सारे पाप दूर हो जाते, गंगा का जल पीने से, गंगा में स्नान करने से। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी बताते हैं कि गंगा का जल आप कई दिनों तक रखो वो खराब नहीं होता। आज दुर्भाग्य की बात है, आप में से कईयों ने पढ़ा होगा कि यमुना जी की स्थिति बहुत खराब है, आपने कई लोगों को मिला है सेव यमुना, एक कैंपेन चल रहा है, अगर आपको नहीं मिला है तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए, मैं आपको ईमेल आईडी पे फॉरवर्ड कर सकता हूं। इतने दुखदायी रिपोर्ट्स हैं कि एक्चुअली यमुनोत्री से यमुना जी आते हैं हरियाणा होकर, हरियाणा से, और दिल्ली के बाद गंगा बहती नहीं है, यमुना बहती नहीं है, सारा पानी जो है वो पीने के लिए और डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज हो रहा है, और जो सुएज वाटर है उसको गंगा जी के नाम से छोड़ा जा रहा है, जो गंदा पानी है, कुछ उसमें ट्रीटेड है कुछ ट्रीटेड भी नहीं है इस तरह से। तो स्पिरिचुअल लेवल पर तो यमुना जी बह रहे हैं वृंदावन में, लेकिन मटेरियल लेवल पर देखे तो एक्चुअली यमुना का जल है ही नहीं उसमें। ऑफकोर्स क्योंकि वो स्पिरिचुअल स्थान है तो स्पिरिचुअल पोटेंसी है, लेकिन कई पिछले बार 25 लोगों की मृत्यु हो गई उस गंगा यमुना जी के प्रदूषण के कारण। और दिल्ली में जंतर मंतर में और बंबई में राधा गिरधारी मंदिर मीरा रोड, राधा रास बिहारी मंदिर जुहू और राधा गोपीनाथ मंदिर से कई भक्त इसके लिए कैंपेन कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर के लेटर्स लिख रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक साइन नहीं किया हो तो आप भी ईमेल के द्वारा सिग्नेटरीज भेज सकते हैं, करीब 2500 भक्तों ने सिग्नेचर्स भेजे। कुछ मेरा पर्पस नहीं था समाव, लेकिन ये टॉपिक आ गया, ये बहुत जरूरी है कि यमुना जी गंगा जी यही तो भारत का वैभव है। भारत का वैभव ये कंप्यूटर्स लैपटॉप और पाम टॉप ये नहीं है, ये तो बाकी बदमाश लोग भी कर सकते हैं जो भक्त नहीं है। भारत की महानता क्या है? पवित्र नदियां, पवित्र मंदिर, पवित्र फिलॉसफी, ये कल्चर है भारत। अब विदेश में जाओ ऐसे कोई नदियां नहीं है जहां पर स्पिरिचुअल पावर हो, नहीं। मिसिसिपी रिवर है और जॉर्डन रिवर, सम रिवर्स आर देयर, बट ऐसी कोई नदी नहीं है जिसके किनारे कृष्ण भगवान ने लीला की हो, चैतन्य महाप्रभु नित्य किया हो। गंगा तो ऐसी नदी है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं रोज गंगा स्नान करने जाते थे। इनफैक्ट गंगा माई निकलती है गंगोत्री से, उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है कि बड़े बड़े राजाओं ने तपस्या की। वो दैट फर्स्ट किंग दिलीप, दिलीप सागर, सागर महाराज, सागर की लंबी कहानी है। सागर के पुत्र दिलीप थे, प्रभु का नाम पहले दिलीप था अभी, तो दिलीप एंड दिलीप सन वाज अंशुमन एंड अंशुमन सन भागीरथ, लॉन्ग स्टोरी। तो फाइनली भागीरथ की तपस्या से गंगा जी प्रसन्न हुए। इसे ही पता चलता है कि कोई भी कार्य में तुरंत सफलता नहीं मिलती। ऐसा नहीं कि दिलीप और अंशुमन वो सिंसियर नहीं थे, लेकिन भगवान का प्लान था कि भागीरथ के द्वारा प्रकट होना। ऐसे हम देखते हैं कोई कोई मूवमेंट में कभी कभी ऐसा होता है, कोई एरिया में डिवोटीज प्रीचिंग करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कुछ नहीं होता, फिर 10 साल बाद कोई और व्यक्ति आता है और तुरंत 100 भक्त बन जाते हैं। तो पहले भक्त ने कोई बीज डाली है और फल वो बाद में प्रकट होता है। तो हम ये नहीं सोच सकते कि क्यों भगवान इसको सफल बनाया, किसी को असफल बनाया। श्रील प्रभुपाद जो पूरे वर्ल्ड के आचार्य हैं, वो भी पहले ऐसे लग रहा था कि असफल हुए। भारत में उन्होंने कितना संघर्ष किया 40 साल के लिए और एक भी भक्त नहीं बना, लेकिन बाद में श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क में गए और सफलता की बौछार हो गई। तो एक भक्त को कभी निराश नहीं होना चाहिए अपने रिजल्ट से, इमीडिएट रिजल्ट से। रियल रिजल्ट क्या है कि हृदय शुद्ध हो रहा है, मेरा हृदय शुद्ध हो रहा है, प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। तो गंगा माई प्रकट होने के लिए तैयार हो गई, लेकिन गंगा माता की यही शर्त थी कि मैं धरती पे आऊंगी, मेरा वेग इतना है कि उस वेग से सब पूरे धरती में प्रलय हो जाएगा, और दूसरी बात सब आएंगे गंगा में स्नान करेंगे, सब अपना पाप डिपॉजिट कर देंगे, कोई विड्रॉ नहीं करेगा, तो मेरा उद्धार कैसे होगा। तो भगवान शंकर जी बोले कि मैं अपनी जटाओं पे धारण करूंगा गंगा को। और जहां तक पाप का सवाल है, जब शुद्ध भक्त आकर गंगा जी में स्नान करेंगे तो पाप को भी ग्रहण कर लेंगे। शुद्ध भक्त जो हैं वो न केवल स्वयं शुद्ध हैं, जो अशुद्धि गंगा में आई है उसको भी पवित्र कर देते हैं। इसलिए शुद्ध भक्ति महिमा जो है वो गंगा जी से भी ज्यादा है। गंगा जी के स्पर्श करने से, स्नान करने से व्यक्ति शुद्ध होता है, लेकिन वैष्णव के बारे में कहा गया दर्शने पवित्र करो यही तो मार्ग। एक वैष्णव को देखने से ही हजारों हजारों गंगा स्नान का फल मिल जाता है, और चाहे वैष्णव जगाई मदाई हो। जगाई मदाई इतने पापी थे कि अगर आज जगाई मदाई का यहां रिकॉर्ड होता तो गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होता उनका नाम, नहीं। जगाई मदाई के जो फाइल थी, जो पापों की फाइल यू नो, जो जो यमराज जी ने रखी थी, यमराज जी ने चित्रगुप्त से पूछा कि
कि मेरे को जगह ही मधाई का रिपोर्ट बनाओ, मैंने सुना है कि वो इसको सॉरी चेतना प्रो मूवमेंट ज्वाइन हो गए हैं, व्हाट इज देयर पास्ट रिकॉर्ड? तो चित्रगुप्ता बोले इम्पॉसिबल, हमने 1,00,000 क्लर्क रखे हैं फुल टाइम ड्यूटी जगह मधाई की सेवा के लिए। और उस समय क्योंकि उस समय ऑटोमेटिक अपडेटिंग नहीं होता था फाइल्स का, किसी को आकर फीड करना होता था, तो तुरंत वो लिखते थे पाप के बारे में और दूसरे यमदूत आकर रिपोर्ट देते कि जगह मधाई ने ये किया, जगह मधाई ने ये किया। इतने सारे पाप थे, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो उनके माउंटेन्स पर्वतों के समान जो पाप की राशि थी वो कम 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 करके एक राई के दाने के समान बन गई और उसको भी उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। तो ये महाप्रभु की कृपा है। जगाई मदाई इतने पापी थे कि जो उनको देखता था वो दौड़ के गंगा स्नान करता था। ये वैष्णव कल्चर है, कोई अपवित्र चीज को देखा तो स्नान, कैसे आप स्मशान घाट में जाते हैं तो आकर फिर स्नान करना होता, ऐसे ही जगाई मदाई को देखते ही लोग गंगा स्नान करते थे। और अब जगाई मदाई इतने महान वैष्णव बन गए कि जो उनको देखता बोलता आज मेरा गंगा स्नान हो गया। इसलिए शुद्ध भक्त की इतनी महिमा है। शुद्ध भक्त को अगर आप दर्शन भी नहीं करते सिर्फ स्मरण करते हैं तो भी हम पवित्र हो जाते हैं, और स्मरण करने के साथ अगर उनके दर्शन करें तो और भी पवित्र हो, और दर्शन से ज्यादा उनसे श्रवण करें तो और भी पवित्र हो जाते, और श्रवण के बाद अगर उनके उपदेश का पालन करें तो जीवन सफल हो जाता, और उससे भी ज्यादा अगर उनके संदेश को दूसरों को पहुंचे। तो श्रील प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा था हाउ कैन वी बेस्ट सर्व यू, हम आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं? श्रील प्रभुपाद बोले गिव टू अदर्स व्हाट आई हैव गिवन यू, जो मैंने आपको दिया कृष्ण भावना का संदेश वो दूसरों को प्रदान करो। तो शिवजी ने अपने जटाओं में गंगा जी को धारण किया उसके वेग कम हो जाए, और फिर इस वचन के इस आश्वासन के साथ कि वैष्णव आकर स्नान करेंगे गंगा जी धरती पर प्रकट हुई। और हिमालय में आप देखते हो बद्रीनाथ गंगोत्री से फिर देवप्रयाग रुद्रप्रयाग सॉरी पहले विष्णुप्रयाग फिर रुद्रप्रयाग नंदप्रयाग कर्णप्रयाग फिर देवप्रयाग। देवप्रयाग मैं रिसेंटली वहां पे गया था, देवप्रयाग में एक बहुत सुंदर मंदिर है। भगवान रामचंद्र जी ने रावण का वध करने के बाद भगवान को सुझाव दिया गया, क्योंकि रावण ब्राह्मण था, हालांकि वो बहुत ही धूर्त व्यक्ति था लेकिन ब्राह्मण था, उसके उसके उस भौतिक दृष्टि से भगवान के लिए तो कोई पाप नहीं है, लेकिन जस्ट लोगों की सांत्वना के लिए भगवान ने वहां आकर तपस्या की थी देवप्रयाग में। आपने सुना है जगह का नाम देवप्रयाग, जो राधानाथ महाराज की किताब में वर्णन आता है, वहां पे गंगा के बहाव से वो बह गए और पासपोर्ट वहीं रह गया था, ये दैट स्टोरी। वो देवप्रयाग है वहां पर, रिसेंटली मैं वहां पर गया था। तो यहां पर गंगा के दो ब्रांचेस मिलते हैं और बहुत बहुत ही सुंदर दृश्य है और पवित्र करने वाला। फिर देवप्रयाग के बाद गंगा जी ऋषिकेश में आते हैं, ऋषिकेश ऋषिकेश भी तपोभूमि है, बहुत वैष्णव और मायावादी सब प्रकार के साधुओं ने वहां पर तपस्या की। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि हर क्षेत्र का प्रभाव होता है, जहां पर किसी वैष्णव कभी रहे हैं या वैष्णव ने जप किया है या वैष्णव के वैष्णव ने प्रवचन किया है या वैष्णव ने शरीर छोड़ा है, वो स्थान पर उस वैष्णव के संघ का लाभ प्राप्त होता है। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने आखिरी वर्ष कहां पर बिताए? 4 वर्ष जगन्नाथपुरी में, 1903 से 1907 तक, फ्रॉम 1903 टू 1907 ही वॉज इन जगन्नाथपुरी। और कहां पर रहे थे जगन्नाथपुरी में? वो आनंद बाजार के पास नहीं बैठे थे, वो हरिदास ठाकुर के समाधि के पास। हरिदास ठाकुर की समाधि इतना दूर होगी जितना ये सामने राधा कृष्ण की फोटो है और ये दीवार है, इतना ही डिस्टेंस, सो क्लोज। लिटरली ही वॉज सिटिंग एट द फीट ऑफ हरिदास ठाकुर, क्योंकि जहां पर हरिदास ठाकुर की समाधि है वहां पर हरिदास ठाकुर हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की हरिदास ठाकुर के स्नान कराने के बाद, ए महातीर्थ हैल, दिस इज अ होली प्लेस ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर वहां रहकर जप कर रहे थे लास्ट 4 वर्ष, समय वो सब प्रचार भी बंद कर दिया था और अपने मुंह को ढक करके कृष्ण नाम में मग्न थे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के विचारों में मग्न थे। वी कैन नॉट इमिटेट, हम उनकी नकल नहीं कर सकते क्योंकि हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन जो भी एक दो घंटे हम जप करते हैं उस प्रकार का एब्जॉर्प्शन होना जरूरी है, नहीं तो हमारा प्रचार थियोरेटिकल होगा। हम दूसरों को बता रहे हैं लेकिन जब तक हम स्वयं भगवान के नाम के रस का आस्वादन नहीं करते तो हम भगवत धाम वापस नहीं जा सकते। टू रिलिश द नेम, रोज भगवान से सुबह उठ के प्रार्थना करनी चाहिए। कबे हबे बोलो ते दिन अमार, माय डियर लॉर्ड व्हेन दैट डे विल बी माइन, व्हेन विल आई बी एबल टू चैंट विदाउट ऑफेंसेस। अपराधे गोचि शुद्ध नामे रुचि कृपा बल होबे हृदय संचार। कब मेरे अपराध दूर हो जाएंगे, कब मुझे शुद्ध नाम में रुचि मिलेगी। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने उदाहरण से हमें सिखाते हैं। कमिंग बैक टू ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद फिर गंगा मई हरिद्वार में पहुंचती है। और आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं भागवतम का, वो हरिद्वार में ही हुआ, राइट? विदुर एंड मैत्रेय, दैट प्लेस इज हरिद्वार। हरिद्वार ये नाम पड़ता है भगवान हरि का जाने का दरवाजा, क्योंकि वहीं से रास्ता शुरू होता है बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ जाने के लिए, इसलिए इस जगह को हरिद्वार कहा गया। और वहां पर एक बहुत फेमस स्थान है हर की पौड़ी, जहां पर शिवजी की एक विशाल मूर्ति है, जहां पर स्नान करने की बहुत महिमा बताई गई है। तो यहां पर गंगा जी के तट के ऊपर विदुर और मैत्रेय आपस में संवाद कर रहे हैं। थोड़ी दूर आप आगे जाएं गंगा के हरिद्वार के बाद तो मुजफ्फरनगर के पास में एक स्थान है शुक्रताल, जहां पर शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को उपदेश किया। परीक्षित महाराज चाहते तो हस्तिनापुर में भी कर सकते थे, नहीं एक एसी रूम लगा देते, ये ना मतलब अच्छा रूम, और वहां पर महल में बैठ जाते, ये ना। और क्यों गंगा के किनारे गए? क्योंकि उस स्थान की महिमा होती है। जो महल होते हैं वो रजोगुण में होते हैं, जो ब्रॉदल है, शराब खाने हैं, वो सब तमोगुण में होते हैं, और गंगा का किनारा या तीर्थ स्थान वो शुद्ध सत्व में होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारे इस्कॉन के मंदिर हैं वो वैकुंठ में, चाहे वो न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन, बॉम्बे में हो, जहां पर कीर्तन हो रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहां पर नाम कीर्तन हो रहा है, यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। जहां पर नाम कीर्तन हो रहा है वहां पर कृष्ण, और जहां पर कृष्ण है वही सबसे पवित्र धाम। हरिद्वार के बाद गंगा माई और आगे गुजरते हुए अनेक स्थान में पहुंचते हैं। कानपुर के पास स्थान है बिठूर, जहां पर वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था। भगवान श्री रामचंद्र जब सीता को वापस लाने के बाद, जब सीता देवी गर्भवती होती है, इसमें भगवान राम देखते हैं कि एक धोबी उनकी निंदा कर रहा है, तो भगवान राम निश्चय करते हैं कि मैं सीता को त्याग दूंगा। तो भगवान स्वयं नहीं बोलते, लक्ष्मण जी को बोलते हैं आप इनको वाल्मीकि ऋषि के आश्रम छोड़ के आइए। तो जब वो जा रहे होते हैं तो सीता देवी सोच रहे थे मुझे कहां ले जा रहे हैं, वो पूछते हैं लक्ष्मण से, लेकिन लक्ष्मण जवाब नहीं देते, उनके आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। और अंत में जब वो वहां पर पहुंचते हैं तब बता देते हैं कि भगवान राम की यही इच्छा है। पहले तो सीता देवी को बहुत दुख लगता है, लेकिन फिर वो मन में सोचते हैं यही मेरे भगवान की यही इच्छा है, तो मुझे ये भी स्वीकार। अब रामायण में सीता देवी का चरित्र पढ़ेंगे तो पता चलता है कि एक समर्पित भक्त को कैसा होना चाहिए भगवान की सेवा के। तो थ्योरी में हम बोल सकते हैं आश्लीष सेवा पदरतम, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है वो सीता देवी के जीवन से हम देखते हैं। भगवान राम जंगल में जा रहे थे, सीता देवी बोले मैं भी साथ में रहूंगी इनकी सेवा में। आजकल कोई स्त्री होती तो बोलते ठीक है आप जाओ, गुड लक, ये ना SMS करते रहना आप कैसे हो, ये ना। सीता देवी वॉज नॉट ऑब्लाइज टू गो, बट शी न्यू द ड्यूटी ऑफ अ चेस्ट वाइफ इज टू फॉलो अवर हस्बैंड। सीता देवी ने भगवान राम से जिद की कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूं, जैसे छाया हमेशा व्यक्ति के साथ में रहते ऐसे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी। भगवान राम ने स्वीकार किया। जब रावण ने सीता का हरण कर लिया उसके बाद सीता को कितनी व्याधि, कितने कठिनाई सहन करने पड़े, कितने टेम्पटेशन थे। रावण कह रहा था कि तुम मुझे स्वीकार कर लो और हम दोनों साथ में विहार करेंगे, ये बाकी सब रानियां तुम्हारी दासी बन जाएंगे, सोने का महल है। लेकिन सीता देवी ने उनकी ओर देखा ही नहीं। सीता देवी अपने और राम के बीच में घास का तिनका रख के बातचीत करती थी कि राम सॉरी वो रावण को डांटते हुए बोलती थी कि हे रावण तुम कुत्ते के समान, जैसे घर का मालिक नहीं होने पे कुत्ता घी का बर्तन चुरा लेता है, वैसे तुमने मुझे चुरा लिया। लेकिन रुक जाओ, थोड़ी देर में धनुर्धारी भगवान श्री रामचंद्र जी आएंगे और तुम्हें गिद्धों का भोजन बना देंगे, है ना। तो सीता वॉज डिटरमिंड, तो कितने प्रलोभन दिए गए। एक बार तो रामायण में युद्ध में रावण एक नकली राम का सिर लेकर आते हैं, ये देखो राम की मृत्यु हो गई। तभी सीता देवी अपने धैर्य नहीं खोते। इतना सब करने के बाद जब बाहर वापस आते हैं तो भगवान राम बोलते हैं आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, आपके बारे में चेक करना होगा कि आपकी पवित्रता है कि नहीं है। और लक्ष्मण को बोलते हैं विवाह अग्नि जलाओ। पहले भी लक्ष्मण को बोला था आप सीता का ख्याल रखो, फिर सीता ने बोला नहीं आप जाओ। तो लक्ष्मण जी सोचते थे टू मच, हर बार सुनना है ना, एक ये बोल रहा है दूसरा ये बोल रहा है, फिर अग्नि जलाना कितना, एक भाई के लिए अपने भाई की पत्नी के से परीक्षा करना वो भी एक काफी एम्बारेसिंग हो जाता। और लक्ष्मण ने अग्नि जलाई और जब अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए बोले ये रियल सीता यहां पर है, तो माया सीता थी और असली सीता उन्होंने वापस दे दी। और यहां पर कोई धोबी के कहने पर भगवान राम फिर से त्याग रहे। लेकिन सीता देवी मन ही मन सोचने लगे यस मेरे प्रभु राम इसमें प्रसन्न है। एक शुद्ध भक्त बनना आसान चीज नहीं है, रियल चैलेंज। योगी बनना भोगी बनना बहुत इजी है, MBA MD MAD ये सब बहुत इजी है, बट टू बिकम अ प्योर डिवोटी, भक्ति मुक्ति स्प्रिया विहीन है जय भक्त, भक्ति उन्होंने ठाकुर बोलते हैं वेरी रेयर। कोटिशपि महामुने, थाउजेंड्स कोटि 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 व्यक्ति में से एक शुद्ध भक्त होता है। तिलक लगाना, कंठी माला पहना, 16 माला जप करना तो इजी है, इजी है मतलब बहुत इजी नहीं, इजी है लेकिन स्टिल बट टू बिकम प्योर अन्याभिलषित शून्यम, हर स्थिति में भगवान को धन्यवाद देना, जो आपकी निंदा करे उसको दंडवत प्रणाम करना, वेरी डिफिकल्ट नहीं, बट दैट्स व्हाट भक्ति इज। फॉर वैल्यूएबल थिंग यू हैव टू पे द प्राइस, यू कैन नॉट गेट, कोई बोले मुझे शिंगदाना के प्राइस में बादाम मिल जाए, है ना, वैसे नहीं मिलेगा आपको, यू नो 2 रुपये में आधा किलो बादाम मिल जाए, नहीं मिलेगा। सो भक्ति इज वेरी प्रेशियस, इसीलिए अगर आपको संघर्ष हो रहा है, कठिनाई हो रही है, तो इसका मतलब आप सही मार्ग पर है। अगर एकदम स्मूथ लग रहा है, या तो आप परमहंस हैं या फिर आप पूरी माया में हैं। जो पूरे माया में होता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है, ही इज जस्ट यू नो ऑलवेज हैप्पी। प्रभुपाद बोलते हैं एक्चुअली टू पीपल आर ऑलवेज हैप्पी, वन इज परमहंस, अदर इज अ फूल, ऑलवेज हैप्पी। सो लाइफ स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष जीवन है। तो सीता देवी वहीं पर रहते हैं और आप जानते हैं कि अंत में कैसे वो लव और कुश का जन्म होता है वहीं पर। तो ये भी गंगा के किनारे, उसके बाद गंगा मई और आगे जाती है प्रयाग, वहां पे यमुना जी का फिर से संग होता है। यमुनोत्री गंगोत्री दोनों हिमालय से निकल रहे हैं, फिर दोनों एकत्र हो जाते हैं यहां पर प्रयाग में। और दोनों भाग्यशाली है, गंगा और यमुना है कि नहीं, दोनों बहन की तरह। लेकिन यमुना देवी का इतना भाग्य था कि श्याम सुंदर कृष्ण जब नन्हे बालक थे, जब मथुरा जी से वसुदेव जी उनको मथुरा से ले जा रहे थे, तब अपनी इच्छा से भगवान कृष्ण थोड़ी देर के लिए गिर पड़े, ऐसे ब्रजवासी बताते। वसुदेव जी घबरा गए, कहां गया मेरा लाला, कोयलो कोयलो कोयलो, कोई बचाओ मेरे बालक को। इसलिए गांव का नाम हो गया कोयलो, मथुरा में एक गांव है कोयलो। और फिर भगवान अपनी इच्छा से प्रकट हो गए। और फिर बाद में वृंदावन में भगवान ने असंख्य लीला किए, दाऊ जी ने भी कितनी सारी लीलाएं की, यमुना देवी के जल में गोपियों के साथ लीलाएं किए। तो यमुना देवी का भाग्य इतना था, गंगा देवी सोच रही थी मेरा भाग्य कब होगा ऐसे। और भगवान गौरहरी ने उनकी इच्छा पूरी की। भगवान चैतन्य प्रभु गंगा के किनारे बहुत लीला करते, और कभी कभी तो कुछ ब्राह्मण आकर शिकायत करते थे जगन्नाथ मिश्र को कि तुम्हारे बालक निमाई ने हमारे नाक में दम करके रखा है, हम स्नान करने जाते हैं, स्नान करके लौट रहे होते हैं और निमाई अपने मित्रों के साथ बाहर खड़े होते हैं, वो गंगा वो कुछ पानी अपने मुंह में लेकर थूक देते हैं हमारे, एक्चुअली वो चरणामृत दे रहे और एक गंगा दे रहे। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। और कुछ बोलने लगे हम स्नान करने जाते हैं और हम लौट के आते हैं तो पुरुष और महिलाओं के कपड़े बदली हो जाते हैं। और कुछ बोले हम स्नान करके आए, हमने भगवान विष्णु के लिए एक आसन बनाया था और मिठाई और फूल माला और चंदन रखा था, लेकिन नीमाई आए और उन्होंने माला पहन ली और चंदन लगा लिया और प्रसाद खाने लगे, प्रसाद नहीं भोग। और फिर जब बोला नीमाई क्या कर रहे हो, तो उसके बोले आप क्यों परेशान हो रहे हो, जिसके लिए आप लाए वही व्यक्ति स्वीकार कर रहे हैं। इस तरह गंगा के किनारे महाप्रभु बहुत लीला कर, प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को उपदेश किया, वो भी गंगा के किनारे। उसके बाद नेक्स्ट गंगा का स्टॉप है वाराणसी, स्टॉप नहीं सॉरी मतलब सिटी वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को 2 महीने तक उपदेश किया। उसके बाद फिर गंगा गया पटना होके आगे जाते, अंत में मायापुर के पास जब भागीरथ ले जा रहे थे तो एक जगह पर गंगा मई रुक गई और भागीरथ पीछे मुड़ के देखे गंगा नहीं आ रही। उन्होंने पूछा गंगा मई को, गंगा मई बोले कि मैं थोड़ी देर रुकना चाहती हूँ यहाँ पर क्योंकि ये गौर पूर्णिमा का समय आ रहा है, मैं यहाँ पर। गंगा माता का स्केड्यूल फिक्स नहीं होता था, वो अपने इसी स्वराट अल्टीमेट। और एक बार तो जनु ऋषि वो तपस्या कर रहे थे, उनको लगा कि गंगा मई डिस्टर्ब कर रही है, तो उन्होंने गंगा को पी लिया खत्म। थोड़ी देर बाद भागीरथ मुनि देखे गंगा है ही नहीं, यहां वहां ढूंढा, ऋषि मुनि से पूछा आपने गंगा को देखा, हाँ देखा कहां पर है, मैंने पी लिया उसका। तो बोले ठीक है प्लीज वापस करिए। तो गंगा जनु ऋषि ने अपने कानों से गंगा को प्रकट किया, इसलिए जानो भी हो। और अंत में फिर सीधा मायापुर से होते हुए गंगा मई कलकत्ता और फिर वहां से गंगा सागर में प्रवेश करते। तो ये जो गंगा की पूरी यात्रा है आप जय विजय प्रभु की किताब में पढ़ोगे, बहुत बहुत सारे स्थान है इसका मैंने वर्णन ही नहीं किया। और जहां जहां गंगा बहती है वो तीर्थ बन जाते। मैं थोड़ा सा माधवेंद्रपुरी के बारे में बोलना चाहता हूँ क्योंकि आज चंदन यात्रा है। ये चंदन यात्रा जब हम भगवान को चंदन से ढकते हैं ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये लीला की शुरुआत माधवेंद्रपुरी से हुई थी। आप जानते हैं कि माधवेंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं ईश्वरपुरी, और माधवेंद्रपुरी एक बार भ्रमण करते करते वृंदावन आए, वहां पर उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा की, और परिक्रमा करने के बाद में एक बालक उनके पास आया और बोला माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी ये लो कुछ दूध है। माधवेंद्रपुरी ने पूछा कि आपको कैसे मालूम मैं भूखा हूं। वो बालक कहने लगा मैं यहीं का रहने वाला हूं और मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता, या तो कोई मांग के लेता है, जो नहीं मांगता मैं उनके लिए स्वयं लेकर आता हूं। यहां पे कुछ माताएं हैं जो पानी लेने आए थे गोविंद कुंड से, उन्होंने मुझे बताया कि आप भूखे हैं इसीलिए मैं जल लेकर आया दूध लेकर आया हूं, आप पी लीजिए, बर्तन लेने में फिर से लौट कर आऊंगा। माधवेंद्रपुरी सोच रहे थे ये बालक है कौन, इसको देखते ही सारे भूख और प्यास नष्ट हो गए, ये बहुत विशेष बालक लग रहा है। फिर उन्हें दूध पी लिया, वो वेट कर रहे थे बालक आएगा आएगा आएगा, लेकिन लौट कर ही नहीं आया। अंत में उनको थोड़ी नींद आ गई और स्वप्न में वो बालक फिर से प्रकट हुआ। माधवेंद्रपुरी मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं बहुत भूखा हूं, मैं बहुत प्यासा हूं। और माधवेंद्रपुरी उठे और पहले सोचने लगे कि मैं कितना मूर्ख हूं, स्वयं भगवान गोपाल जी आए थे और मैं पहचान नहीं सका। वो अपने आप को धिक्कारने लगे और फिर सोचे नहीं मुझे भगवान को निकालना। क्या मैं समझे कि भगवान जब विग्रह के रूप में है तो उनको भूख लगती है प्यास लगती है, जैसे भी राधा वृंदावन चंद्र यहां पर आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर नहीं बाय फेब्रुवरी, तो ये जानना चाहिए भगवान प्रकट हो रहे हैं, भगवान वेट कर रहे हैं कब मुझे आप बाहर निकालोगे, मुझे बॉक्स में बहुत गर्मी लग रही है, कब मुझे भोग खिलाओगे, मुझे मुझे बहुत इच्छा हो रही है कि जो आप कुंज बिहारी को खिला रहे हो मुझे क्यों नहीं खिला रहे आप। भगवान में भी कंपटीशन होता है। एक बार जगन्नाथ मंदिर में साक्षी गोपाल को जगन्नाथ मंदिर में रखा गया, राजा थे, राजा प्रैक्टिकल होते, सोचे कम खर्चा होगा, सोचा पता नहीं क्या, सॉरी मैं अपराध नहीं करना चाहता, उन्होंने एक ही मंदिर में दोनों ड्यूटीज रख दी। तो अगले दिन जगन्नाथ स्वप्न में आए, राजा को बोले देखो ये जो आप लाए हो ना मैं गोपाल जी को, जैसे आप प्लेट रखते हो मेरे देखने से पहले वो खा जाते हैं। इनका अलग अरेंजमेंट करो भाई, सेपरेट डिपार्टमेंट। समझ आती है भगवान को भूख लगती है। कई बार हम ऑफरिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें खाना होता है, घर में पति पत्नी को नहीं जल्दी ऑफरिंग करो, 8:45 हो गए, 9 बजे असली भगवान को खाना है, पहले 8:45 बजे जल्दी बनाओ इडली, यू नो मुझे निकलना है, ऑफिस जाना है. तो दैट इज ऑल राइट फॉर होम वर्शिप, बट टेम्पल वर्शिप में हायर स्टैंडर्ड्स होती. यू नो वी कुक 6 times a day और भगवान खाते हैं. एक बार एक डिवोटी बोले, प्रभुपाद ये आर्य समाज के लोग बोल रहे हैं कि आप जब भगवान को भोग लगाते हो तो भगवान खाते नहीं, ये तो खाली आपकी भावना है, ये तो खाली फॉर्मेलिटी है. प्रभुपाद जी बहुत गंभीर है, बोले कृष्ण सेस पत्रम पुष्पम फलम तोयम अश्नामी प्रयतात्मन, मैं खाता हूं, कृष्ण बोल रहे हैं. जब कृष्ण बोल रहे हैं मैं खाता हूं, मैं किस पे विश्वास करूं, भगवान श्री कृष्ण पर या तुम्हारे जैसे लोफर पर? कृष्ण ईट्स, कृष्ण खाते हैं. और जो शुद्ध भक्त है उसको टेस्ट का फर्क पता चलता है. अब शुद्ध भक्त को प्रसाद खिलाओगे वृंदावन का, मायापुर का, मुंबई रास बिहारी का या गोपीनाथ का, उसको फर्क मालूम पड़ता है अलग अलग डीटीज के प्रसाद का, कि हम उतने शुद्ध नहीं है, हमें फर्क पता नहीं चलता. तो यहां पर माधवेंद्रपुरी की प्रसन्नता के लिए भगवान प्रकट हुए गोपाल जी, और सब ने कुल्हाड़ी लेकर खुदाई की, वो गए वहां कातरज या जहां पर भी भगवान, दैट एरिया वेर द लॉर्ड वॉज देयर, वेर इज द डीटी नाउ हियर और इन कातरज, यस आई एम टेलिंग परंपरा में बोल रहा हूं. तो तुरंत जाके खुदाई शुरू की भगवान की डीटीज को, इतनी भारी डीटीज थी कि उठाना मुश्किल था. 30 लोगों ने मिलकर उठाए उस विग्रह को. फिर भगवान को स्नान कराया, बहुत धूल लगी हुई थी, कई कई हजारों 900 मटके जल के लेकर गंगा गोविंद कुंड से स्नान किया, फिर पंचगव्य, फिर पंचामृत, फिर भगवान को अच्छे वस्त्र पहनाए, फिर वस्त्र पहनाने के बाद भगवान को भोग अर्पण किया. और इतना भोग अर्पण किया गया, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, इट वॉज लाइक गोवर्धन पूजा, एवरीबडी वॉज रिमेम्बरिंग अन्नकूट फेस्टिवल, जैसे अन्नकूट में होता है. और हजारों हजारों आइटम्स भोग लगाए भगवान को, सबको प्रसाद वितरण किया गया. और प्रसाद वितरण के बाद, क्योंकि मंदिर मंदिर के पास मंदिर के लिए पैसे नहीं थे उनके पास, तो उन्होंने क्या किया, एक शिला को मंदिर बना दिया, एक पत्थर को, और पीछे एक शिला रख दी भगवान के रेस्ट के लिए. दैट वॉज अ टेम्पल, दैट्स ऑल. बाद में कोई भक्त आ गया, वो राजा या कोई रिच व्यक्ति था, उसने मंदिर के लिए पैसे दिए, बाउंड्री वॉल बनाई गई. कोई बोला मैं मंदिर के लिए गाय दान करता हूं, ऐसे कई 100-200 गाय दान कर दिए. शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं ये भी सिस्टम है मंदिर को चलाने के लिए, कि कई लोग अपनी प्रॉपर्टी को मंदिर के नाम से कर देते हैं. जैसे 10 एकड़ मंदिर के लिए जमीन है, तो इसमें जो भी उगेगा, जो भी बिजनेस होगा, जो भी प्रोडक्शन होगा, उसका प्रॉफिट राधा कुंज बिहारी की सेवा के लिए अर्पण होगा. तो इस तरह से जब वो सब उन्होंने व्यवस्था कर दी और विश्राम कर रहे थे, फिर से भगवान सपनों में आए गोपाल जी, माधवेंद्रपुरी मेरी गर्मी दूर नहीं हुई है, आप जाओ मेरे लिए कुछ जगन्नाथपुरी से चंदन लेकर आओ, मलय चंदन. श्रील प्रभुपाद यहां बताते हैं कि मलय चंदन इसलिए बोला क्योंकि उस समय मलेशिया से भी चंदन आता था. आजकल प्रभुपाद जी बोलते हैं रबर प्रोडक्शन होता है, दे डिफरेंट प्रायोरिटीज. बहुत मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, अगर आपको समय मिले तो आज आप पढ़ना डिटेल में ये कहानी कैसे. माधवेंद्रपुरी फिर निकल पड़े, उन्होंने पूजा 2 ब्राह्मणों को दीक्षा दी पूजा करने के लिए, और स्वयं निकल पड़े जगन्नाथपुरी. अभी सोचिए माधवेंद्रपुरी के पास कोई वाहन नहीं था, वो पैदल चल रहे थे, अकेले थे, और रास्ते में नदियां पार करते, जंगल से गुजरते हुए उनका एक ही विचार था, हाउ कैन आई प्लीज गोपाल, मैं कैसे गोपाल को खुश करूं. एक भक्त का मतलब है इसका कांस्टेंट मेडिटेशन ये होना चाहिए कि बस कैसे भगवान खुश होंगे. बस अगर मेरे को अपना आहार और निद्रा भी त्यागना पड़े कोई बात नहीं, भगवान की खुशी के लिए. जब प्रभुपाद जी ने राधा रस बिहारी मंदिर बनाया तो कितने संघर्ष हुए. मैं पर्सनली वहां पर था उस समय 1977 में. ऑफकोर्स मैं जब था तब तो संघर्ष खत्म हो चुका था, लेकिन मैं उद्घाटन के लिए था 78 में. तो कितने भक्तों ने सेक्रीफाइस किया. कोई भी अच्छी चीज बिना सेक्रीफाइस के, बिना त्याग के प्राप्त नहीं होती. तो यहां पर ये माधवेंद्रपुरी के केस में इट वॉज जस्ट वन मैन शो, अकेले ही वो सब सेक्रीफाइस कर रहे. और चलते 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 वो रेमुना आए. रेमुना में उन्होंने गोपीनाथ जी की ड्यूटी देखी. ये जो गोपीनाथ जी की ड्यूटीज हैं बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि इनकी रचना, इनका निर्माण स्वयं भगवान राम ने किया था. जब भगवान राम रमण करते करते वनवास के समय रेमुना पहुंचे, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं रेमुना नाम पड़ता है रमणीय से, वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। भगवान राम मुस्कुरा रहे थे। सीता देवी ने पूछा कि आपका अगला जन्म कैसा, अगला अवतार कैसे होगा? भगवान राम बोले मैं अभी बताता हूं। उन्होंने जमीन से एक शिला ली, एक स्टोन, और अपने तरकस से एक बाण निकाल के भगवान गोपीनाथ जी का एक विग्रह बनाया। ये मेरा रूप होगा। सीता देवी को इतना अच्छा लगा, बोले मैं इसकी पूजा करना चाहती हूँ। कुछ साल तक सीता माई ने पूजा किए, फिर परंपरा में अलग अलग लोगों ने किए, और अब उड़ीसा में इसकी पूजा हो रही है, रेमुना में, बालासोर स्टेशन से करीब 8 किलोमीटर दूर। तो जब माधवेंद्रपुरी वहां पर आए तो जैसे ही उन्होंने भगवान को देखा उनकी आंखों से आंसू आने लगे, भगवान को देखकर नृत्य करने लगे, गाने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि माधवेंद्रपुरी नित्य गीत करे जगमोहन बशीला। जगमोहन, जगमोहन बोलते हैं मंदिर के कॉरिडोर को। तो वहां पर कॉरिडोर में कीर्तन कर रहे थे, फिर उन्हें पुजारी से पूछा कि भगवान को यहाँ क्या क्या भोग लगता है। कई बार हम भी मंदिर में जाते हैं तो पूछते हैं क्या क्या भोग लगता है, हमारा इंटेंशन थोड़ा अलग होता है क्योंकि जो भोग लगता है वही बाहर आता है, लेकिन माधवेंद्रपुरी किस लिए सोच रहे थे क्या क्या भोग लगता है? वाई वॉज आस्किंग, वो सोच रहे थे वही आइटम्स में गोपाल जी को अर्पण करूंगा, ये उनका इंटेंशन था। और ब्राह्मण ने बताया कि यहां पर स्पेशली एक खीर का भोग लगता है जिसका नाम है अमृत केली। आप में से कितने भक्तों ने टेस्ट किया वो खीर? बहुतों ने किया। जिन्होंने नहीं किया उसका मैं वर्णन ये है, उसका वर्णन है कि वो खीर उसी खीर के बराबर है, उसके बराबर कुछ नहीं। प्रभुपाद जी बोलते हैं इट इज कॉल्ड पृथ्वी ते आचे भोग कहा नहीं आर, देर इज नो खीर लाइक दिस इन दिस वर्ल्ड, यू नो, इसके बराबर कुछ भी नहीं है। तो माधवेंद्रपुरी मन में सोच रहे थे भगवान को भोग लग रहा है, अब मैं मांग तो नहीं सकता, ही वॉज टू हम्बल, इतने नम्र थे, सोचे थे मांगना भी ठीक नहीं है। एक लेवल है कि डिमांड करना, मेरे को खीर चाहिए, नहीं दोगे तो क्या, दूसरा है कि मांगना, प्लीज अगर हो सके तो खीर देना, तीसरा है कि मांगना भी नहीं। माधवेंद्रपुरी वॉज सो हम्बल, दैट्स व्हाई ही वॉज डिवोटेड टू द लॉर्ड। तो भगवान वो मांग भी नहीं रहे थे, वो मन में सोच रहे थे बिना मांगे अगर भगवान देंगे तो मैं थोड़ा टेस्ट करके वैसी खीर मैं गोपाल जी के लिए बनाऊंगा। ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ। आत्मिंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले प्रेम। आत्मेंद्रिय प्रीति, जब हम अपने आप की तृप्ति के लिए कार्य करते हैं उसको काम बोलते हैं, जैसे मटेरियल वर्ल्ड में सब इंद्र तृप्ति के लिए, और कृष्णेंद्रिय प्रीति, कृष्ण कहते प्रसन्न होंगे। अभी नए मंदिर के निर्माण में भी संघर्ष है, ऐसे नहीं है कि सब कुछ स्मूथ है, कई भक्त दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात फंड कलेक्शन कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है? कृष्ण के लिए मंदिर होगा। इस मटेरियल वर्ल्ड में भी लोग मेहनत करते हैं दिन रात, क्या उद्देश्य होता है? कि मेरे लिए घर होगा, मेरा 2 रूम अपार्टमेंट है 4 रूम हो जाएगा, मेरा 2 व्हीलर है और 2 व्हील और लग जाएंगे, पीपल वॉन्ट फॉर देमसेल्स, बट अ डिवोटी इज वन हु सेक्रीफाइसेस एवरीथिंग फॉर कृष्ण। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर के जीवन में ऐसे एक भक्त थे, उनके शिष्य, जिनका नाम था जगत बंधु प्रभु। और जगत बंधु प्रभु एक गृहस्थ थे, वो इतने अटैच थे अपने गुरु की सेवा के लिए कि बाग बाजार मंदिर बनाने के लिए उन्होंने हर एक पैसा दे दिया, अपना FD या CD, मतलब क्या, आई डोंट नो व्हाट्स कॉल्ड, सेफ डिपॉजिट, सब कुछ दे दिया, अपना घर भी बेच दिया उन्होंने कि भगवान के लिए मंदिर बने। और फाइनली उनके पास रहने की जगह नहीं थी, ही वॉज ओल्ड मैन, तो भक्तिधाम ठाकुर ने उनके लिए आश्रम में ही जगह बनाई कि वहीं पर रह सके। ऐसे व्यक्ति को कृष्ण की प्राप्ति होती है, क्योंकि कृष्ण बहुत होशियार हैं, वो थोड़े से खुश नहीं होते, वो देखते हैं, वो नहीं देखते आपने क्या दिया है, वो देखते हैं आपने क्या पीछे रखा है, वो बैलेंस देखते हैं उनके पास काफी है सब प्रकार के बैलेंसेस का। कृष्ण वॉन्ट्स यू टू सरेंडर कंप्लीटली, दैट इज फॉर अवर इंटरेस्ट। तो मैं शॉर्ट में एंड करूंगा। तो फाइनली वो खीर के बारे में सोच रहे थे, और फिर वो सोचे ओ मैं कितना अपराधी हूं, आई एम नॉनसेंस, मैं कैसे अपराध कर रहा हूं, भगवान को भोग लग रहा है और मैं स्वयं खाने के लिए सोच रहा हूं, मुझे जगह से चले जाना चाहिए, मैं योग्य नहीं हूं इस मंदिर में बैठने के लिए। ऐसा सोच के माधवेंद्रपुरी वहां से निकल गए और मार्केट में जाके एक दुकान के पास बैठकर हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस वो नाम जप में लगे हुए थे। और फिर रात को गोपीनाथ प्रकट हुए पुजारी के स्वप्न में। उठो पुजारी, उठो पुजारी, उठो उठो, कर द्वार विमोचन, अब देखो दरवाजे को खोलो, खीर राखी आछे, आई हैव केप्ट सम स्वीट राइस फॉर माधवेंद्र पुरी। तो ये पुजारी था, वो उठा, स्नान किया, और उसने पर्दे के पीछे देखा तो उनको आश्चर्य हुआ कि भगवान ने एक खीर का बर्तन छिपा के रखा। नहीं, जनरली पुजारी बहुत होशियार होते हैं बांटने में, या जो भी प्रसाद होता है तुरंत बट जाता है। मैं जब पुजारी था कुछ समय के लिए, तो जैसे ऑफरिंग होता है तो मैं पीछे डिवोटी को बोलता, ऑफरिंग के बाद मेरे लिए प्लेट निकाल के रखना। नहीं, वी आर वेरी क्लियर। इसलिए मैं 2 साल रहा पुजारी। बट माधवेंद्र पुरी वॉज, यू नो, सॉरी, दिस पुजारी वॉज सरप्राइज कि कैसे माधवेंद्र पुरी के लिए, अगर आप शुद्ध, अगर आप शुद्ध हो तो भगवान स्वयं सब अरेंजमेंट्स करते हैं। योग क्षेम वहां में हम, माधवेंद्र पुरी ने प्रार्थना भी नहीं की कि मेरे लिए खीर छुपा के रखना, है ना, लेकिन भगवान ने खीर छुपा। फाइनली माधवेंद्र भगवान पुजारी को बोले कि आप माधवेंद्र पुरी को दो, तो बर्तन लेकर गए और पुकारने लगे, माधवेंद्र पुरी, माधवेंद्र पुरी, कौन है माधवेंद्र पुरी? माधवेंद्र पुरी स्वयं सामने आए, बोले मैं हूं, क्या बात। पुजारी दंडवत प्रणाम किए, कि उन्होंने कभी देखा नहीं था कि भगवान ने किसके लिए खीर चुराया। नहीं, अपने लिए हर कोई चुराता है, वो सब जानते हैं, लेकिन लेकिन यहां भगवान चुरा रहे। वृंदावन में भगवान अपने लिए चुराते, उनका नाम है माखन चोर, लेकिन ये लीला ज्यादा गहरी है क्योंकि यहां भगवान भक्त के लिए चुरा रहे हैं। माधवेंद्र पूरी लागे खीर कई लचुरी, अतएव नाम है लखीर चोर हरी। भगवान ने माधवेंद्र पुरी के लिए खीर चुराई, इसलिए उनका नाम हो गया खीर चोर हरी या खीर चोर गोपीनाथ। तो माधवेंद्र पुरी बहुत नम्र बन गए। अभी मैं होता या आप होते, अगर भगवान ने कुछ हमारे लिए किया तो हम इतने खुश हो जाते और हम तुरंत ईमेल भेजते सबको, ईमेल एट पेमो और जीमेल, ईमेल सब, यू नो, देखो ये लीला हुई है, फोटोग्राफ्स के साथ अगर हो सके, यू नो, बेटी जी में आना चाहिए। वी फील जस्ट लाइक, मैं प्रभुपाद से सिर्फ एक ही बार मिला, और मैं कई बार भक्तों को बताता हूँ मैं प्रभुपाद से मिला था, मैंने लेक्चर अटेंड किया था। वी वॉन्ट टू बी रिकोगनाइज। बट माधवेंद्र पुरी वॉज थिंकिंग, अभी सब लोग आएंगे, सब बोलेंगे अरे माधवेंद्र पुरी के लिए खीर चोरी किया, ये ठीक नहीं है, ये मैं प्रसिद्धि नहीं चाहता। इसीलिए वो जगन्नाथपुरी चले गए, उन्होंने खीर पिया, ये बात है, उन्होंने रखा नहीं, पूरा पी लिया उन्होंने तुरंत, और उन्होंने बर्तन को भी संभाल के रखा। उस बर्तन को धोकर, वो मिट्टी के बर्तन को क्रश करके रोज थोड़ा थोड़ा खाते थे वो उसको, इस तरह से। और फिर वो जगन्नाथपुरी पहुंचे, तो वहां पर वो इसलिए गए क्योंकि प्रसिद्धि नहीं चाहते थे, लेकिन शुद्ध भक्त के प्रसिद्धि अपने आप आ जाती। ये फैक्ट है कि दुनिया में सब लोग लक्ष्मी चाहते हैं, तरसते हैं, पूरी दुनिया परिक्रमा कर रही है लक्ष्मी देवी की, कि नहीं, एवरीबडी इज वॉन्टिंग लक्ष्मी। लेकिन जो भक्त होता है, भगवान अपने आप लक्ष्मी देते हैं, अपने आप प्रतिष्ठा देते हैं। जगन्नाथपुरी के सारे पंडों को पता चल गया था, बोले आप ही हो माधवेंद्र पुरी, हमने सुना कि आपके लिए भगवान ने खीर चोरी की है। इंटरेस्टिंग है, भक्तों में कोई समाचार छिपता नहीं, उस समय मोबाइल्स नहीं थे, ईमेल नहीं था, और उनके आगे कोई गया नहीं था, पता नहीं कैसे समाचार मिल गया उनका। तो माधवेंद्र पुरी बोले यस मैं ही हूं, मुझे थोड़ी मदद चाहिए, मुझे भगवान गोपाल जी के लिए चंदन चाहिए। तो ये सुन के बहुत प्रसन्नता के साथ जगन्नाथपुरी के भक्तों ने उनको चंदन भी दिया, 2 असिस्टेंट्स भी दिए उठाने के लिए, सारे कागजात दिए, पेपर्स दिए। इस समय मुसलमानों का राज्य था, इतना 40 किलो चंदन उठा के ले जाना साधारण नहीं है। उस समय उनका कोई व्हील बैग नहीं था कि रोल करते हुए ले जाए, बस फिजिकली कैरिंग। और वो भक्तों को धन्यवाद देकर वापस रेमुना आए, वापस वृंदावन जाने के लिए। इस बार पुजारी ने तुरंत लाकर महाप्रसाद दे दिया, क्योंकि पुजारी नहीं चाहते थे कि रात को फिर डिस्टर्ब हो, यू नो, दिस इज माय स्पेकुलेशन। तुरंत अपने आप खीर दे दिया, माधवेंद्र पुरी ने खीर ले लिया, और सोचा सुबह मैं निकलूंगा, और रात को फिर से स्वप्न आया, और इस बार स्वप्न में कौन आए? गोपाल जी आए, बोले माधवेंद्र पुरी, मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, आप जो खीर लेकर आए हो वो यही पर अर्पण कर दो गोपीनाथ को ही। यहां कुंज बिहारी है, बंबई में रास बिहारी है, गोपीनाथ है, गिरधारी है, माधव है, भगवान एक ही है। आप चाहे यहां ऑफरिंग करो, वहां करो, कहीं पर भी भगवान को भोग लगाओ अगर श्रद्धा से किए। तो माधवेंद्रपुरी, भगवान बोले माधवेंद्रपुरी को जितना भी आप चंदन लाए हो सब यहीं पर घिसकर गोपीनाथ को अर्पण कर दो, अगर गोपीनाथ खुश हो गए तो मेरे को मेरी गर्मी भी दूर हो जाएगी। जैसे आज के दिन जगन्नाथपुरी में चंदन यात्रा होती है, भगवान जगन्नाथ कृष्ण बलराम जो ड्यूटी उत्सव मूर्ति को बाहर लेकर आते हैं प्रोसेशन में, और शाम के समय बहुत सुंदर नौका विहार होता है। आप में से किसी ने देखा है जगन्नाथपुरी का नौका विहार होता है ना? और वहां पर स्वान शेप में बोट्स बने होते हैं हंस के शेप में, और भगवान कृष्ण बलराम को बिठा के कई बार घुमाते हैं। और इस्कॉन मायापुर में भी ऐसे उत्सव मनाया जाता है, प्रभुपाद पुकुर है ना समाधि के पास में, भगवान की बहुत सुंदर लीलाएं होती है, और ऐसे ही भुवनेश्वर में भी। तो चंदन यात्रा ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है कि कैसे भक्त भगवान के गर्मी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। डिवोटी वॉन्ट्स टू सर्व द लॉर्ड। एक और चीज है चंदन यात्रा का सिग्निफिकेंस कि भगवान के हृदय में एक गर्मी है, एक अग्नि है। कितने सारे जीव संसार में दुखी हैं, कृष्ण इज वेरी मच एग्रीव्ड। और प्रीचिंग करना, प्रचार करना, हरि नाम बांटना, वो है भगवान को चंदन लगाना है। जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम पुस्तक वितरण के द्वारा, लेक्चर्स के द्वारा या नए मंदिर के निर्माण के द्वारा, जब हम कृष्ण के लोगों को कृष्ण के करीब आने में मदद करते हैं, तो इससे बढ़कर कोई ऑफरिंग नहीं है। भगवान स्वयं गीता में बोलते हैं कि जो मेरा संदेश मेरे भक्तों को सुनाता है उससे बढ़कर प्रिय न कोई है न कोई होगा। तो माधवेंद्रपुरी इस तरह से चतुर्मास्य के सब समय जगन्नाथपुरी में ही रहते हैं, और सारा चंदन भगवान गोपीनाथ जी को अर्पण होने तक वहीं पर रहते हैं, और उसके बाद फिर वो वृंदावन लौट कर आ जाते हैं। और शिला प्रभुपाद जी यहां पर कमेंट करते हैं, सॉरी चैतन्य महाप्रभु कमेंट करते हैं। चैतन्य महाप्रभु इज आस्किंग, नित्यानंद तुम ही करो विचार, ओ लॉर्ड नित्यानंद प्लीज जज, आप विचार करो। पूरी सम भाग्यवान जगत नहीं आर, माधवेंद्र पुरी के समान भाग्यशाली कोई नहीं है। क्यों? दुग्ध दान छले दर्शन दिल, पहली बार भगवान दूध देने के बहाने उसको दर्शन देने आए। तीन बार स्वप्न आज्ञा कैल, तीन बार स्वप्न में आए। कैसे आए तीन बार? पहली बार मेरे को बाहर निकालो, दूसरी बार चंदन लेके आओ, तीसरी बार गोपीनाथ को अर्पण। इसका मतलब आपने प्रवचन में आपको स्वप्न नहीं आया, आप जाग रहे थे। तीन बार भगवान स्वप्न में आए। और एक और इंटरेस्टिंग लीला प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जार लागे गोपीनाथ खीर कैल चूरी, अतएव नाम होइल खीर चोर करी। चैतन्य महाप्रभु ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि म्लेच्छ देशे कर्पूर चंदन आनीते जंजाल, जंजाल मतलब इनकन्वीनियंस, प्रॉपर ट्रांसलेट करते हैं, देर वॉज सो मच इनकन्वीनियंस इन ट्रेवलिंग विथ कैम्फर एंड सैंडलवुड, बिकॉज ऑफ दिस माधवेंद्रपुरी माइट हैव बीन इन ट्रबल बट स्टिल ही डिड इट। ये इंटरेस्टिंग चीज है कि भगवान ने क्यों ऐसा किया कि यही चंदन गोपीनाथ को अर्पण कर दीजिए, भगवान ने क्यों नहीं बोला कि आप वहां ले आओ? कि भगवान नहीं चाहते थे कि माधवेंद्रपुरी को ज्यादा कष्ट हो। माधवेंद्रपुरी ने थोड़ा प्रयास किया और उसको भगवान ने स्वीकार कर लिया। एक्चुअली कृष्ण ही सब कुछ करते हैं। महाभारत की लड़ाई के बाद भीम और अर्जुन में झगड़ा हो गया। भीम बोले देखो मैंने विजय प्राप्त की, मैंने इस गदा से 100 गधों को मारा था, दुर्योधन दुशासन इन कंपनी। और अर्जुन बोले मैंने अपने तीर से भीष्म को घायल किया, अगर भीष्म घायल नहीं होते तो कैसे विजयी होती? कर्ण को किसने मारा? मैंने ही मारा। तो दोनों भगवान कृष्ण के पास गए कि आप रेफरी हो, आप डिसाइड करो। भगवान बोले हम उसके पास जाएंगे जिसने पूरा युद्ध देखा हो। तो बब्रुवान के पास गए जो ऊपर से सब लड़ाई देख रहे थे, लड़ाई से पहले उसका सिर काटा गया था और ऊपर से देख रहा था, जैसे बालकनी शो, यू नो यू आर सीइंग एवरीथिंग। तो उसके पास गए, पूछे कि क्या बात है, आपका क्या ओपिनियन है, भीम ज्यादा लड़ाई की कि अर्जुन ने? हंस के बोले दोनों तरफ सिर्फ श्री कृष्ण ही थे, ही वॉज डूइंग एवरीथिंग। तो यहां पर भी माधवेंद्रपुरी को भगवान क्रेडिट देना चाहते थे कि वो गए, उनको चंदन उठाना भी नहीं पड़ा ज्यादा समय तक, खाली पूरी से रेमुना तक 200 किलोमीटर उठाना पड़ा और क्रेडिट मिल गया पूरे का, ये ना। ऐसे हम तो थोड़ी थोड़ी चीज करते हैं, हम थोड़ा पैसा एकत्र करते हैं, ईंट लगाते हैं, डिजाइन बनाते हैं। एक्चुअली कृष्ण सब कुछ कर चुके हैं। 2000 BC में ये मंदिर बन चुका था पहले कृष्ण के माइंड में। वी आर जस्ट एक्टिंग लाइक स्मॉल पपेट्स। और फाइनली चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं पूरी माधवेंद्र पुरी के समान कोई भक्त नहीं है त्रिभुवन में, क्योंकि भगवान ने उनके लिए खीर चोरी की। और एक और गुण था उनका कि वो अकेले भ्रमण करते, वो किसी को साथ नहीं ले जाते। हम साथ में किसी को ले जाते हैं तो पूछना पड़ता है आप कैसे हो, ठीक है, थोड़ा प्रजल्प हो जाते हैं। तो वो ट्रेवल ऑल अलोन, और वो इतने महान भक्त थे कि अगर वो नीले बादल को भी देखते तो उनको कृष्ण याद आ जाते और वो बेहोश हो जाते थे कृष्ण की याद करके। दैट वॉज द इंटेंसिटी ऑफ हिज डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद जी बोलते हैं ही इज अ रूट ऑफ द ट्री ऑफ डिवोशनल सर्विस एंड ही इज अ ट्रंक ऑल्सो। वही पेड़ के जड़ है और वही बीज का भाग भी वही है। और माधवेंद्रपुरी के बारे में कहा गया कि जो राधा रानी की पूजा हम करते हैं कुंज बिहारी के साथ, वो माधवेंद्रपुरी ने शुरू की, पहले सिर्फ कृष्ण की पूजा होती थी। तो जो हमारी परंपरा में जो राधा रानी की पूजा की शुरुआत है वो माधवेंद्रपुरी से हुई है। सो ही इज एक्चुअली द रिजर्वायर ऑफ लव ऑफ गॉड, वो भंडार है। और चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं इज इनकार्नेशन ऑफ द कल्पवृक्ष ट्री फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। और माधवेंद्रपुरी का एक गुण था कि भूखे होने पर भी मांगते नहीं थे, इसको बोलते हैं अजगर वृत्ति। अलग अलग लेवल्स है रेनाउंसिएशन का। एक है कि मैं, मुझे चाहिए ये आइटम्स बनाइए, मुझे पूरी चाहिए, सब्जी चाहिए, पनीर चाहिए, और ये दैट इज वन लेवल। और भगवान को ऑफरिंग कर देंगे एज अ यू नो जस्ट टू मेंटेन रिलेशनशिप, यू नो दैट इज फर्स्ट लेवल। सेकेंड लेवल इज जो भी बनाए मंदिर में वो स्वीकार करना। उससे भी क्या तीसरा कि कुछ मंदिर में भी नहीं, बस भिखारी की तरह बैठे रहना, कोई आके दे दे तो ठीक है, भिक्षा मांगना। और चौथा है कि भिक्षा भी नहीं मांगना, वो है अजगर वृत्ति। तो बहुत एडवांस डिवोटीज कर सकते हैं कि बस कुछ मांगना ही नहीं और कुछ आ जाए तो धन्यवाद देना। तो माधवेंद्रपुरी उस स्तर के ऊपर थे, इसीलिए प्रभुपाद जी उनको ग्लोरीफाई करते हैं कि ही वुड नॉट बैग, मांगी या ना खाए और सब तकलीफों को सहन करते। और यही भक्त का लक्षण है, तुम्हारे सेवा ते जई ते दुख सही तो परम सुख। प्रगाढ़ प्रेमेर यही स्वभाव, निज दुख नहीं करे विचार। आई रीड द इंग्लिश बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लव इज द डिवोटी डज नॉट कंसिडर पर्सनल इनकन्वीनियंस और इम्पेडिमेंट्स, वह स्वयं की बाधा के बारे में सोचता ही नहीं है, वो खाली भगवान की सेवा करना चाहता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं A devotee means he does not care for discomfort, scarcity, impediments, unhappiness. He feels great happiness. और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि लास्ट मिनट में माधवेंद्रपुरी ने एक श्लोक बोला। किसी को मालूम है कौन सा श्लोक था? अयि दीन दयाद्रनाथ हे मथुरानाथ कदावलोकस्य हृदयम त्वद अलोक कातरम दयित भ्रमाति किम करोमि हम। वो श्लोक में बोल रहे हैं, राधा रानी बोल रहे हैं, ओ माय लॉर्ड, ओ मोस्ट मर्सीफुल मास्टर, ओ मास्टर ऑफ मथुरा, व्हेन विल आई सी यू अगेन? बिकॉज ऑफ माय नॉट सीइंग यू माय एजिटेटेड हार्ट हैज बिकम अनस्टेडी, ओ मोस्ट बिलवेड कृष्णा, व्हाट शैल आई डू नाउ? यानी राधा रानी जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा रानी बोल रहे हैं कि हे मथुरा नाथ, आपको नहीं देखने के कारण मेरा मन कातर हो रहा है। और महाप्रभु ये श्लोक माधवेंद्रपुरी अपने आखिरी समय पे गा रहे थे, और महाप्रभु श्लोक बोलकर जमीन पर गिर पड़े, फिर उठे और फिर गिरे। आई दीना बोले बार बार, नेत्र बहे अश्रुधार, उनके आंखों से आंसू आ रहे थे और वो एक्सेसी में आकर आई दीना बोल रहे थे। और फिर महाप्रभु इतने ओवरवेल्म्ड हो गए, यहां बताया गया कि नित्यानंद प्रभु उनको गोद में उठाया, हुंकार करी हासे कांडे नाचे गाए, ही वॉज मेकिंग रिसाउंडिंग नॉइसेस, गरज रहे थे हरी हरी, हंस रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, और आई दीन बोलकर उनकी आवाज बंद हो गई। और फिर इसके बाद भक्तों ने उनको कंट्रोल कर दिया, फिर पर्दा खुल गया भगवान के, गोपीनाथ के दर्शन करने के बाद पुजारी 12 मटके खीर के सब महाप्रसाद चैतन्य महाप्रभु को दे दिए, और चैतन्य महाप्रभु ने 5 ही मटके रखे और 7 वापस कर दिए। क्यों? ये खाली 5 डिवोटीज थे, महाप्रभु दूसरों का भी ख्याल रख रहे थे। He took only 5. एक्चुअली महाप्रभु ने पहले ही खा लिया था प्रसाद खीर, मालूम है गोपीनाथ के रूप में, और फिर से उन्होंने ग्रहण किया। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। तो आज के दिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है माधवेंद्रपुरी के चरित्र पे और चंदन यात्रा पे। आई थिंक 21 डेज चंदन यात्रा चलती है, इसमें हमारा मेडिटेशन हो कि मैं भगवान कुंज बिहारी के लिए, गोपीनाथ के लिए या राधा वृंदावन चंद्र के लिए मेरा पूरा लाइफ, मेरा पूरा जीवन अर्पण कर सकूं। माधवेंद्रपुरी की तरह मुझे कठिनाई हो, लोग निंदा करें, दुख आए, बीमारी हो, तो भी मैं उनकी सेवा को नहीं त्यागू। ये हमारा मेडिटेशन होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी सेवा भावना होगी उसके अनुसार भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि मुझे कृपा दो, मुझे त्रिनादपि सुनी चाहिए नए भाव में जप करने का अवसर दो, और माधवेंद्रपुरी की तरह विरक्त होकर हम उनकी सेवा कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो माधवेंद्रपुरी की जय, चंदन यात्रा की जय। कोई कमेंट्स या प्रश्न? यस प्रभु।
कृष्ण आपने ये बताया कि
जगन्नाथपुरी में गोपाल जी, यस ये सब पार्टनरशिप में काम करते हैं, कभी एक हो जाते हैं कभी अलग हो जाते हैं। इनको कौन क्वेश्चन कर सकता है? नहीं, भगवान को वाई नहीं पूछना चाहिए, वाई यू आर डूइंग लाइक दिस, है ना। कृष्ण मुरली क्यों बजा रहे, वायलिन क्यों नहीं बजा रहे, है ना। उनकी इच्छा है। कृष्ण क्यों नीले रंग में, क्यों लाल रंग में भी आ सकते थे, नहीं गीता में 18 अध्याय क्यों बोले, 125 क्यों नहीं बोले। कृष्ण इज, यू कैन आस्क योर सेल्फ और माई सेल्फ, बट फॉर कृष्ण इज, एक बार वो बोलते हैं कि हम दोनों अलग है, अलग अलग प्लेट बनाओ, फिर एक बार बोलते हैं चंदन यहां लगा तो वहां भी चला जाएगा। हमको प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, राइट। जैसे हमें यहां मंदिर बनाना है तो हम बोले यहां डोनेशन दो, नहीं अगर आप कहीं और दोगे तो यहां नहीं मिलेगा। वी हैव टू प्रैक्टिकल ऑल्सो, ये नहीं कि आप कहीं मंदिर दे दो यहां बन जाएगा। बट स्पिरिचुअल लेवल पर भगवान स्वीकार करते हैं जहां पर भी। ओके मायावादी गंगा को पूजनीय मानते हैं, उनको ये पता नहीं है कि कृष्ण का रूप है। इनडायरेक्टली वो भी पूजा कर रहे हैं, लाभ तो होता ही है, लेकिन वो कृष्ण के स्वरूप को नहीं स्वीकार करते। जब भगवान के हाथ पैर नहीं है तो उनके चरणों से क्या आएगा? नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली जैसे शिवानंद स्वामी, उनके आश्रम में मैं रहा था अभी 2 दिन, तो शिवानंद स्वामी के जो शिवानंद स्वामी वहां पे वो ध्यान करते थे, निर्विशेषवादी थे, लेकिन ऐसा बताते हैं कि उनको भी कृष्ण से अटैचमेंट था। उन्होंने कृष्ण की मूर्ति भी उनके आश्रम में रखी है जिसकी पूजा करते, हम उनको वैष्णव नहीं बोल सकते। और उन्होंने एक भजन कुटिया बनाई थी, उसमें मंत्र गाते थे वो ये हरे कृष्ण मंत्र ही गाते थे। ये इंटरेस्टिंग है। और वो हालांकि हैं वो मायावादी, लेकिन इस्कॉन भक्तों का बहुत आदर करते हैं, और इज वेरी, यू हैव टू सी गुड क्वालिटीज, वी डोंट एक्सेप्ट देयर फिलोसफी, लेकिन उनके अच्छे गुण हैं कुछ, तो उसको हम आदर से स्वीकार करते हैं। तो गंगा के किनारे कोई भी रहेगा अंत में भक्त हो ही जाएगा, चाहे मायावादी भी हो, अगर वो जीवन भर गंगा के किनारे रहते हैं और उनकी अगर इच्छा है सत्य को जानने की तो भगवान प्रकट होंगे। वे चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेने के बाद जा रहे थे वृंदावन, तो नित्यानंद प्रभु उनको धोखे से कहां ले गए, गंगा के किनारे शांतिपुर, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, यहां मुझे बच्चे बोल रहे हैं हरी 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 हरी, ये बच्चे हरी का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब गंगा पास में ही होगी, मतलब वेर एवर गंगा इज देयर द होली नेम विल इवेंचुअली अपियर। शांतिपुर में भी गंगा है, एक दिन शांतिपुर है। सो समहाउ बीइंग नियर गंगा इज, कई लोग जैसे अभी जगन्नाथपुरी में कई बंगाली होते हैं जो समुद्र किनारे पिकनिक सैटरडे संडे आते हैं, चिकन खाते हैं और पाप करते हैं, लेकिन वो जगन्नाथपुरी में स्नान करते हैं वहां पे जहां हरिदास ठाकुर ने समाधि बनाई थी, तो उनको थोड़ा लाभ मिल जाता है। समहाउ अदर तो धाम का कई कई व्यक्ति वृंदावन में आ रहे हैं और किसी घूमने के बहाने भी आ रहे हैं, और बीच में थोड़ा घूमते घूमते लस्सी पीते पीते बांके बिहारी को प्रणाम कर देते हैं, तो भी थोड़ा लाभ मिल जाता है। लेकिन रिकमेंडेड प्रोसेस नहीं है, ऐसे नहीं हम रिकमेंड नहीं करते कि इसलिए, बट आर गेटिंग सम बंशी वादन कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस, लाइक टू से समथिंग, एनी अदर कमेंट्स? मुरारी प्रभु सम कमेंट्स ऑन दिस। आप सब वैष्णव मुझे आशीर्वाद दो, मैं शुद्ध हो जाऊं, हमेशा गा सकूं हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील माधवेंद्रपुरी की जय, चंदन यात्रा की जय, राधा कुंज बिहारी की जय।